नीचे हो गया क्या? अच्छा रजनी भाई नीचे सिद्धि धर्मचल मनोमंगलिं पत्ते ओच्छामि समय बाहुर मेनो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय सानुभूत्याचकासके चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। ग्रंथादिराज समय सार भरत क्षेत्र का भगवान एक एक गाथा अलौकिक है। युगल जी गारुड़ी मंत्र की उपमा देते, जैसे सांप का जहर गारुड़ी मंत्र से उतर जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व का जहर गाथाओं में जो एक एक भाव भरा है, एक एक गाथा में अलौकिक भाव भरा है, वो यदि जीवन में उतर जाए, जैसा शब्द है उस शब्द का वैसा ही अर्थ समझा जाए और वैसा ही जीव का भाव हो, तो मिथ्यात्व भागने में देर नहीं करता। शब्द का अर्थ तो जानते हैं लेकिन उस अर्थ के अनुसार भाव नहीं होता, इसलिए स्वाध्याय करके भी शास्त्र को जान करके भी मिथ्यात्व रह जाता है। मिथ्यात्व कोई वास्तविक वस्तु नहीं है कि जो अनादि अनंत रहे, मिथ्यात्व तो विकारी काल्पनिक वस्तु है। जब तक ये रखना चाहता है तब तक रहता है और रखना न चाहे तो वो चला करके नहीं रहेगा। अनादि काल से अनंतानंत ज्ञानी हुए, वो भी आप और हमारी तरह ही थे पहले, भूतकाल प्रभु आपका, कि जो आपका भूतकाल है मेरा वह वर्तमान है, और जो आपका वर्तमान है जैसा आपने मार्ग अपनाया वैसा ही मैं अपनाऊंगा तो भविष्यकाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 144 नंबर की गाथा है। सभी गाथाएं सभी शब्द अलौकिक है, विशेष होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ विशेष गाथाएं। पक्षाति क्रांत की गाथा है, 144 नंबर की गाथा पाठ कर लेते हैं पहले, फिर टीका जहाँ से चली है। सम्मत दंशन नाणम एसो लहरितिनवरिवदेशम संवणय पक्खर हिदो भणिदो जो सो समय सारो सम्यत्व और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भाषित वो समय का सार है। बहुत सरल अर्थ में संक्षेप में बताया कि पक्षातिक्रांत समय सार है। पक्षातिक्रांत वह समय का सार है, अर्थात सभी प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प दशा वो समय सार है। आगे आचार्य टीका में उसकी विधि बता रहे। सुबह प्रवचन में, प्रकाश भाई के प्रवचन में एक बात आई थी, उसके अनुसार जीव पक्ष में कब तक रहता है। उन्होंने जवाब उसमें दिया, जीव पक्ष में कब तक रहता है या जीव संसार में कब तक रहता है, जीव विकल्प में कब तक रहता है, कोई भी, जब तक वह वस्तु खटकती नहीं है तब तक वो उस चीज को वो जीव निकालने का प्रयत्न नहीं करता। सीधा सा जवाब है, बात समझ में आ गई। जब तक विकल्प अच्छा लगता है तब तक जीव विकल्प में रहता है, जब तक संसार अच्छा लग रहा है संसार में ही रह रहा है, जब तक पक्ष उसको खटकता नहीं है, जब तक नीचे से कोई चीज आपको चुभ नहीं रही होगी ना, आप आराम से बैठो, है क्या नहीं, और खटके तब एक वाक्य आपके सामने कहता हूं, राग का राग, राग के राग का राग, कितने शब्द आ गए, 3 शब्द आ गए। स्वामी जी ने कहा, ये विचार आया कल पढ़ रहा था स्वाध्याय में, 3 शब्द, राग के राग का राग नहीं करना, वो कठिन पड़ गया, राग के राग का राग नहीं करना। राग का राग चारित्र का दोष है और उस राग का राग मिथ्यात्व का दोष है। पकड़ में आ गई बात, राग का राग ये चारित्र का दोष है और उस राग का राग वो मिथ्यात्व का दोष है। समझ में आ गई बात। जो दूसरे नंबर का राग है वो रौद्र ध्यान है। दूसरे नंबर का जो राग है ना वो रौद्र ध्यान है, क्यों कि विषयों के निमित्त से जो होता है वो आर्त ध्यान है और कषायों के निमित्त से जो होता है वो रौद्र ध्यान है। विषयों के निमित्त से जो ध्यान होता है उसको तो कहते हैं आर्त ध्यान, और कषायों के निमित्त से जो ध्यान होता है उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। बात समझ में आ गई। विस्तार के लिए फिर गाथा रह जाएगी, कि विस्तार इसलिए, वास्तव में दोष तो अनेक है। अगला जो कलश है इस गाथा के बाद उसको भी अपन नहीं पढ़ पाएंगे पूरा, लेकिन उसमें से एक बात समझनी है। श्लोक है 95 नंबर का, विकल्प में रहना उसका अर्थ है पक्ष में रहना, ऐसा चल रहा है यहाँ पर। अब दूसरी बात, यहाँ क्या कहते हैं कि विकल्प कर रहे हो यहाँ तक तो कोई दोष नहीं, ध्यान से सुनना, कि विकल्प में हो यहाँ तक तो कोई दोष नहीं है, लेकिन विकल्प का परम करता और विकल्प का विकल्प परम केवलम कर्म केवलम। सरल अर्थ क्या है इसका कि जो जीव विकल्प करता है वो जीव अकेला विकल्प नहीं कर रहा है, बल्कि जो जीव विकल्प करता है वो जीव कर्ता कर्म संबंध से कभी मुक्त नहीं होता। पकड़ में आया प्रभु? क्या विकल्प करने वाला जीव सिर्फ विकल्प नहीं कर रहा, विकल्प करने वाला जीव विकल्प के साथ कर्ता कर्म संबंध को लिए हुए हैं। विकल्प करे और अपने आप को कर्ता न माने ऐसा नहीं हो सकता। विकल्प करने वाले जीव के कर्ता कर्म संबंध नाम का दोष अवश्य पाया जाता है। केवल विकल्प विकल्प नहीं कर रहा, विकल्प करने वाले जीव के कौन सा दोष का पाया जाता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अमृत चंद्र कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति देख लीजिए, यदि श्लोक है तो 95 नंबर का, ये 90 हाँ ऊपर है। न जातु मतलब कभी तीन काल में कर्तृ कर्मत्वम कर्ता और कर्म संबंधपना कर्ता कर्मपना नष्ट नहीं होता। किसके? सविकल्पस्य, जो विकल्प करता है उसके कर्ता कर्म संबंध या कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। कर्ता कर्मपना जहाँ होता है वहाँ भोक्ता भोग्यपना अवश्य होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ अकर्ता की बात है इस गाथा में कि अनादिकाल से यह जीव पक्षातिक्रांत नहीं हुआ है, और पक्षातिक्रांत नहीं हुआ है और पक्षातिक्रांत हुए बिना जो वस्तु का स्वरूप है उसका स्वाद नहीं आता। देखो कल भी बात चली थी और सभी विद्वानों ने बात चलाई थी प्रमाण वाली बात, लालचंद भाई के आधार से ये बात कही थी कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, है ना? एक बात, पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत तो होता ही नहीं। मंदिर में आए बिना मंदिर के बाहर जाए कैसे नवीन भाई? पक्षातिक्रांत, पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत होता नहीं। कि शुद्ध चैतन्य तत्व के विकल्प न आए तो निर्विकल्प कहां से? उसके विकल्प ही न करे तो निर्विकल्प कैसे होगा? तो विकल्प करने वाला ही निर्विकल्प होता है, लेकिन विकल्प कौन से? चार बातें देखो, चारों अनुयोग अपने जीवन में है या नहीं कैसे पहचाने? कि प्रथमानुयोग प्रेरणा के लिए होता है, प्रथमानुयोग प्रेरणा के लिए होता है, मतलब प्रथमानुयोग से प्रेरणा होती है, और चरणानुयोग में विवेक होता है, करणानुयोग में विचार होता है, और द्रव्यानुयोग में ध्येय होता है। बात समझ में आ गई? दोबारा, प्रथमानुयोग से प्रेरणा लेनी चाहिए, अनादिकाल से अनंतानंत जीव मोक्ष गए। कैसे गए? कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी धर्म को अंगीकार करके मोक्ष गए। अब उनको कोई कमी नहीं थी संसार में, फिर भी उसको छोड़कर चले गए। आशय समझ में आ गया? कि लौकिक पुण्य का उदय विशेष था, लेकिन उस पुण्य के उदय में रमे नहीं, और उस पुण्य के उदय की जिनवाणी में क्या है, देखो छोड़ने का अर्थ क्या है, द्रव्यान योग में खासकर लक्ष्य नहीं करना ही छोड़ना है। नहीं आई बात समझ? लक्ष्य नहीं करना ही छोड़ना है। जय सुबह चेतन भाई ने कही थी ये बात कि पर्याय नहीं छोड़नी है, पर्याय दृष्टि छोड़नी है। पर्याय छोड़ना चाहो तो भी छूट नहीं सकती। वस्तु में तीन भाग है, एक द्रव्य है, एक गुण है और एक पर्याय है अनादि से। आप हटाना चाहो तो भी नहीं हट सकते। पर्याय को हटाना चाहे तो हट नहीं सकती। बात समझ में आ गई? अब पर्याय हट नहीं सकती तो क्या करे कि तू ही हट जा। पर्याय तो हट नहीं सकती, पर्याय हट नहीं सकती तो तू ही हट जा का अर्थ क्या है कि पर्याय से 320वीं गाथा के अनुसार पर्याय चक्षु को सर्वथा। बात समझ में आ गई? पर्याय नहीं हटती, पर्याय से दृष्टि हट जाती है तो उसको कहते हैं पर्याय दृष्टि नष्ट हुई। पर्याय नष्ट हुई या पर्याय दृष्टि नष्ट हुई? पर्याय नष्ट नहीं होती, वो तो एक क्षण की है, उसका अस्तित्व सदा काल है। लेकिन पर्याय से दृष्टि हटाना ये पर्याय दृष्टि का नाश है। कहने का आशय ये है कि कुछ हटाना वटाना नहीं है। नहीं आई बात समझ? कि जो ये कहा जाता है प्रथमान योग में, भर्तृहरि की वो कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जंगल में तपस्या करने के लिए गए, वहाँ रसायन सिद्ध किया भर्तृहरि ने, और शुभचंद्र के पास वो रसायन भेज दिया था। कहानी में लंबा नहीं जाना है। और उस रसायन को भर्तृहरि ने जब शुभचंद्र को दिया तो शुभचंद्र ने कहा कि सोने बनाने वाले रसायन को ही सिद्ध करना था तो घर में सोने की क्या कमी थी। बात समझ में आ गई? भाई इस काम के लिए घर छोड़ा था क्या? कि सब अनुकूलताएं होने पर भी सुख नहीं था। बात समझ में आ गई? और सुख नहीं था इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा। छोड़ा ये तो कहने की भाषा है। जब स्वरूप में लीनता बढ़ जाती है तो बाहर का त्याग अपने आप। बात समझ में आ गई? जिसको छोड़ना कहते हैं, छोड़ा नहीं जाता, अपने आप छूट जाता है। चार बातें लंबी न हो जाए, मूल गाथा पर जाना है कि पहली बात प्रथमान योग से प्रेरणा, चरणान योग में विवेक और करणान योग में विचार और द्रव्यान योग में ध्येय। पूरा समय सार पढ़ लीजिए, लेकिन ध्येय की प्राप्ति न हो तो पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। पूरे द्रव्यान योग पूरा पढ़ लिया और दृष्टि जहां जानी है, ये बात अलग है। देखो ये बात अलग है, 217 नंबर का वचनामृत का बोल है। पहले ध्येय का ज्ञान होता है, बाद में ध्येय का ध्यान होता है। बात समझ में आ गई? बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो सुबह चली थी और विकल्प था उसको भी पढ़ने का, उस पर भी विचार करने का। जैसे सुबह जो विषय आया था प्रकाश भाई जी के, उसमें आपने पहले त्रिकाली चैतन्य वस्तु का ज्ञान होता है, पहले रहित का ज्ञान होता है, फिर रहित का सहित सहित ध्यान होता है। बात समझ में आ गई। इस पर भी विचार करने का विकल्प था, लेकिन देखते हैं बाद में, अभी तो अपने विषय पर विचार करते हैं कि पर्याय सहित आत्मा जब ध्यान का ध्येय बन जाता है, पर्याय रहित आत्मा जब ध्यान का ध्येय बन जाता है, तब पर्याय सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय बन जाता है। बराबर है रजनी भाई? दोबारा, पर्याय रहित आत्मा जब ध्यान का ध्येय बन जाता है, तब पर्याय सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय बन जाता है। समझ में आया था अर्थ? सुबह चलाया था उन्होंने कि पर्याय रहित आत्मा क्या होता है? ध्यान का। अब देखो कितनी छोटी सी बात है कि आत्मा पर्याय रहित ही ध्यान का ध्येय बन जाता है। कहा ना, द्रव्यान योग में से यदि ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है, द्रव्यान योग में से ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें से यदि द्रव्यान योग में से ध्येय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं है। वो ध्येय क्या है? रजनी भाई का भाव भी था कि भी ध्यान का विषय चलाना, 47वीं का था द्रव्य संग्रह की, लेकिन सारांश के रूप में, संक्षेप में जो बात है उतनी सी अपन पढ़ करके आगे बढ़ेंगे कि पर्याय रहित आत्मा ये ध्यान का ध्येय है। और ये सारी चर्चा कहाँ चल रही है? पर्याय में। मतलब ध्यान का ध्येय पर्याय रहित है, है? और यही बात 47वीं जो गाथा है द्रव्य संग्रह की, ध्यान में ही निश्चय और व्यवहार दोनों का जन्म होता है। 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की क्या कहा है उसमें? ध्यान में ही दोनों नयों का जन्म होता है, निश्चय का भी और व्यवहार का। स्वामी जी इस संबंध में कहते हैं कि जब ध्यान का ध्येय जाना जाता है, तब द्रव्य श्रुत भाव श्रुत होता है। जब ध्यान के ध्येय का ध्यान होता है, तब ये हो रहा है भाव श्रुत पूर्वक। और भाव श्रुत की दशा है सविकल्प दशा। भाव श्रुत की दशा है सविकल्प की दशा। सविकल्प दशा में द्रव्य श्रुत में ध्यान का ध्येय जब जानने में आता है, उस काल में द्रव्य श्रुत भाव श्रुत बन गया और उस भाव श्रुत में नयों का जन्म होता है, निश्चय नय और व्यवहार नय। और उस व्यवहार नय में ना द्रव्य नाम स्थापना निक्षेप इनका जन्म होता है। बात समझ में आ गई? जब तक ध्येय ध्यान में नहीं आता है, ध्येय का ध्यान नहीं होता है, जिनागम की शुरुआत ही नहीं होती है। इसलिए समय सार की 15वीं गाथा में कहा है कि जो पश्यदि अपानम, पश्यदि जिन शासनम सौवम। क्या कहा? ये ड्यूटी अकेली मेरी नहीं है भैया। आपको भी बोलना है। जो पश्यदि अपानम, है ना, पहला चरण। चौथे चरण में कहते हैं कि पश्यदि जिन शासनम सौवम, कि जो अपने आत्मा को देखता है वो सारे जिन शासन को देखता है, है? और यहां इस गाथा की टीका में भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करता है। इसका अर्थ भी क्या है कि श्रुत के द्वारा जो आत्म स्वभाव को देखता है, जानता है, कौन? जिसको सुनते हुए नींद आ रही हो नहीं नहीं है बात समझ में। देखना तो अपने आप को, दुनिया खूब देख ली लेकिन उसमें न तो आनंद आया न सुख मिला। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अरे प्रभु मुझे इतना याद है, ये है वो है, बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, वृद्धावस्था में बीमारियां घेर लेंगी, जाने की इच्छा होगी तो भी नहीं जा पाएगा, और यहाँ आना है तो बिना चाय पिए नहीं आता हाँ 5,68,99,584 रोग है उत्कृष्ट पने नवीन भाई कितने 5,68,99,584, इतने प्रकार से असाता का उदय आता है, आता है ना। इतने में से कितने हैं भैया है? प्रमाद नहीं करना, अपना हित साधने के लिए प्रमाद नहीं करना, और स्वाध्याय भी स्वाध्याय के लिए नहीं, अपने प्रयोजन भूत ध्रुव शुद्ध चैतन्य जो ध्यान का ध्येय है, मतलब स्वाध्याय में से ज्ञान मत निकालना, स्वाध्याय में से ध्यान का ध्येय निकालना चाहिए हा? तो कहते हैं कि अपना ध्यान का ध्येय क्या है, उसके लिए अवलंबन किसका लिया, श्रुत ज्ञान अवस्तंभेन शब्द है ना ये हा? ये जो अवस्तंभ शब्द है भाई, वो बार बार मुझे कह रहा है कि बार बार रिपीट कर लो अपने लिए, कि वो इसलिए कि अवस्तंभ का अर्थ है सहारा। सहारा किसको, कि जिसमें चलने की शक्ति नहीं है, जिसके परिणाम कमजोर है, सीधे ध्येय तक दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए स्वाध्याय अवलंबन है, ध्येय नहीं है। शिविर का ध्येय तो हो सकता है स्वाध्याय कराना, इतने घंटे स्वाध्याय कराना, इतने शिविर का ध्येय हो सकता है स्वाध्याय कराना, लेकिन ध्यानी का ये ध्येय नहीं है स्वाध्याय करना। क्या ध्यानी का ध्येय तो क्या है, बात समझ में आ गई। कई कई बार कई प्रकार के विकल्प आते हैं कि ध्यान के ध्येय की प्राप्ति कैसे हो, कि यदि शुद्ध त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के बिना चैन न पड़े तो वो ध्येय बिना रहे नहीं। लोक में भोजन के बिना पार नहीं पड़े, लेट हो जाए तो आकुलता हो, नहीं मिले तो आकुलता हो, अनुकूल नहीं मिले तो आकुलता हो। उदाहरण स्वामी जी देते हैं कि जिस माँ का बालक हो गया है, हर जगह बालक भी माँ माँ बोलता है, और माँ को भी उसकी याद आए बिना नहीं रहती है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही जिसको अपने स्वरूप में जाए बिना खटक लगती है, अपने स्वरूप में जाए बिना चैन न पड़े, बात समझ में आ गई। ये विधि है भैया, प्रायोगिक विधि। कौन सी विधि है, प्रायोगिक, प्रयोग करने वाली विधि है ये। तो प्रयोग कैसे करें, अभी मति ज्ञान का भी प्रकरण आ जाएगा कि जिसके बिना चैन न पड़े खटक रहे। कि ज्ञानियों को तो स्वरूप से बाहर निकलना, चरणान योग की भाषा में कहे, ये तो केवल भाषा है भैया, उदाहरण मात्र है, भाव कैसा होगा कल्पना करना। दूसरी बात ये भी है कि जिसके पैर में घाव नहीं हुआ है, दूसरे के पैर में घाव होने पर दर्द कैसा होता होगा ये इसको पता भी नहीं चलता। ज्ञानियों की बात तो ज्ञानी ही जानते हैं है? सुबह प्रकाश भाई जी के उसमें उदाहरण भी एक आया था कि स्वामी जी से प्रश्न किया था कि स्वरूप मतलब अनुभव होने के बाद कैसा लगता है, तो कैसा लगता वो तो नहीं बताया, लेकिन ये लगता है कि अरे आत्म अनुभव तो इतना सरल था, मैंने आज तक क्यों नहीं किया है? इतनी सरल है। स्वामी जी तो पापड़ का भी उदाहरण देते हैं कि पापड़ तोड़ना कठिन है लेकिन स्वरूप में जाना ये सरल है। कैसे बताया? कुछ बहुत सारे उदाहरण ऐसे है प्रभु कि हार्ट फेल हो जाए, ऐसा हो जाए, पापड़ तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया हो और उसी समय तो तोड़ना कठिन हुआ क्या नहीं है? उदाहरण तो एक देश है। स्वरूप में जाना आसान है, स्वरूप में रहना भी आसान है, क्योंकि ये निज घर है। किराए के घर में मालिक कब निकाल दे कोई पता नहीं है। बात समझ में आ गया? ये शरीर है, ये किराए का मकान है, आयु कर्म के निशय इसके मालिक है, है? कब समाप्त तो हो जाए, कब जाना पड़े, उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, अपने अपने हित की बात सोचना चाहिए। उसके लिए यहां बताया श्रुत ज्ञान अवस्टम्बेन, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के कि जो सीधा अपने परिणामों को अपने स्वरूप तक नहीं ले जाता, या यूं कहे कि अपने परिणामों को त्रिकाल स्वरूप मैं अनुभव नहीं करता, अपने त्रिकाल स्वरूप से अभेद तन्मय व्याप्य व्यापक रूप नहीं करता, कर नहीं पाता, उसके लिए श्रुत ज्ञान का अवलंबन बताया। लेकिन श्रुत ज्ञान का अवलंबन भी किस लिए? कि पंडिताई के लिए नहीं, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, ध्येय को प्राप्त करने के लिए, ध्येय के पास जाने के लिए। अब क्या करना चाहिए कि ज्ञान स्वभावम आत्मानम, ये पढ़ लिया था अपने, ज्ञान स्वभावम आत्मानम, मैं त्रिकाल चैतन्य वस्तु ज्ञान स्वभावी अनंतानंत गुणों से भरा हुआ पिंड हूं, ऐसा निर्णय करके। बात समझ में आ गई? अब ऐसा निर्णय करके जो स्वाध्याय किया जाता है वो क्षयोपशम के लिए नहीं, निर्णय पर टिकने के लिए किया जाता है, निर्णय निशंक होने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? निशंक होने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई? छोटा सा उदाहरण है, कोई चीज किसी की खो गई, घर में वो देख ली, दो चार जगह वो जाके आ गया था, है? दो चार जगह जाके आ गया था, तो दो चार जगह घर में वो ढूंढ रहा है बार कि भैया तू घर में अच्छी तरह से देख ले, नहीं है, नहीं मिले तो बाहर चले जाना। अब तेरा आधा मन ये कि क्या पता घर में है या नहीं है, नहीं है बात समझ, क्या पता घर में है या नहीं है। ऐसा यदि अधूरा मन है तो तेरा प्रयत्न पूरा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? आशय क्या है कि मन यदि अधूरा है तो प्रयत्न पूरा कभी नहीं होता। यहां हम लोग बैठे हैं ना, नमस्कार करके बैठे हैं, स्तुति करके भी जाएंगे, नमस्कार कायोत्सर्ग करके भी जाएंगे, लेकिन विश्वास पूरा नहीं है। है क्या पूरा? नहीं है, अधूरा विश्वास है। विश्वास पूरा होता तो काम हो जाता, विश्वास पूरा नहीं है प्रभु, अधूरे विश्वास से है। यहां सुन रहे हैं लेकिन सुख बुद्धि बाहरी पड़ी गई है। बात समझ में आ गई? विचार किस लिए करना चाहिए था? निशंक होने के लिए। वो चारों अनुयोगों की चार बातें बताई थी आपको, हो गई थी पूरी वो, हाँ? प्रथमानुयोग से प्रेरणा लेनी चाहिए, चरणानुयोग में विवेक रखना चाहिए, कर्णानुयोग में विचार करना चाहिए, और ध्यान का ध्येय, ये द्रव्यान योग में से लेना है। बात समझ में आ गई? और जिनसे मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा करना योग, उदाहरण देते हैं कि जैसे खाट होती है, उस खाट के चार पाए, उसमें से एक भी टूटा हो तो नींद नहीं आती है? खाट के चार पाए होते हैं, उसमें से एक भी टूटा हुआ हो तो नींद नहीं आती। लेकिन द्रव्यान योग में से लक्ष्य को प्राप्त किए बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। प्रथमान योग में हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने इतना वैभव छोड़ दिया और वन जंगल में जाकर के दीक्षा ली, किस लिए? कि द्रव्यान योग में से जो ध्येय प्राप्त हुआ था, उस ध्येय की अखंड साधना के लिए है? उस अखंड साधना में जब सविकल्प दशा रहती है तो कर्णान योग आदि ग्रंथों का यथा योग्य अध्ययन करते हैं। लेकिन लक्ष्य कहाँ रहता है? ध्येय के ऊपर। उस ध्येय को यहाँ कहा कि ज्ञान स्वभावी चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, वो दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का ध्येय है, वही विश्राम स्थल है। जीव को और कोई साथ ही अनंत काल के लिए विश्राम देने वाला नहीं। शरीर भी आयु कर्म रूपी मालिक का घर है। ये मिट्टी के मकान आदि की तो बात बहुत दूर की है। स्थाई यदि आश्रय देने वाला है कोई, 13वें कलश में भी है ये बात, समय सार के 13वें कलश में भी विधि की बात बताई, आत्मा को आत्मा में स्थापित करना चाहिए। किसको? किसमें? आत्मा को आत्मा में स्थापित करना चाहिए, अर्थात पर्याय में जो दुनिया भर के बाहर के विषय कषाय स्थापित कर रखे हैं, कहाँ स्थापित कर रखे हैं? पर्याय में जो बहुत सारे विषय कषाय स्थापित कर रखे हैं, उनकी जगह शुद्ध चैतन्य त्रिकाली देव को स्थापित करके आराधना करनी चाहिए। क्या स्थापित कर रखा है? विषय कषाय भोगों को स्थापित कर रखा है, उन्हीं को सार रूप मान रखा है। करना क्या चाहिए? कि पर्याय रहित आत्मा को वहां स्थापित करना चाहिए। अब फिर आपका प्रश्न आता रहेगा साहब कि स्थापित कैसे करें? अलवर में था ना, मैं अलवर, कि वहां के पंडित जी, वो तो छोड़ो, गाथाएं होता है कितनी, समय सारी चला 5 साल, 255 गाथाओं तक पहुंचे थे। आप तो हमको ध्यान का ध्येय बता दो। अब बताने में तो संक्षेप में होता है, करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। जो चीज दी जाती है वो अपने पास ही है, पहली बात तो ये, और वो यदि प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त हुई है तो उसको स्थिर रखना चाहिए। प्रयत्न दोनों जगह चाहिए, पहले भी और बाद में भी। नहीं है बात सुन? अरे 11वें गुणस्थान से भी जब जीव गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? कि प्राप्त की जो प्राप्ति हुई थी उसको टिका नहीं पाया, इसलिए वहां से भी गिर जाता है। कि ज्ञान स्वभावी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही मैं हूं, इसके बिना और कहीं नहीं रुचता, तो समझ लेना हमने आज कुछ कदम आगे बढ़ाए। एक तो स्थूल विकल्प और एक सूक्ष्म विकल्प, ऐसे इस गाथा के व्याख्यान में स्वामी जी ने बताया कि मैं शरीर वाला हूं, ये तो बहुत स्थूल विकल्प है। मैं रागी हूं, ये भी स्थूल विकल्प है, और मैं ज्ञायक हूं, ये भी विकल्प है, लेकिन सूक्ष्म है। बात समझ में आ गई? मैं ज्ञायक हूँ, ये भी सूक्ष्म विकल्प है। अब बहुत विकल्प चलता है अंदर में कि पक्षातिक्रांत की विधि क्या है, शब्दों में वो आ ही नहीं सकती। जो चीज अभ्यास से प्राप्त करनी चाहिए या होती है, उसको यदि हम सुनकर के प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं है। यहाँ भी केवल कितनी सी बात बताई कि द्वादशांग का अध्ययन करके भी निर्णय तो इतना सा ही करना था। कौन सा? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं, चैतन्य ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा मैं, लेकिन वो मैं सविकल्प है या निर्विकल्प है? बात समझ में आ गई? वो सविकल्प है या निर्विकल्प है? प्रारंभिक भूमिका में सविकल्प होता है, और जिसके ये सविकल्प भी नहीं है उसको निर्विकल्प की भी प्राप्ति नहीं होती है। कि आत्मख्याते, आगे शब्द है कि आत्मख्याते, आत्मा की ख्याति के लिए, मतलब अनंत जितने भी ज्ञानी हुए आज तक, उन्होंने पर्याय में उसकी ख्याति की है, क्योंकि वस्तु तरीके अनादिकाल से वो ख्यात ही है, अंतरंग में विराजमान है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा अंतरंग में विराजमान है, अनादि से है। अब तेरी बात कितनी तैयारी की है कि उसकी ख्याति अपने आत्मा में करनी है, आत्मा की आत्मा में ख्याति करनी है, कि पर्याय में उस चैतन्य देव को रख करके उसमें एकाग्र होना है, ये ही आत्मा की ख्याति है। समझ में आ गई बात? यही समझने लायक है बस, कि निज चैतन्य देव ही समझने योग्य वस्तु है, वही रहना यही एक रहने योग्य वस्तु है, उसी का ध्यान करना वही ध्यान योग्य वस्तु है। आत्मा की ख्याति के लिए क्या लिखा है शब्द? आत्मख्याते, आत्मा की ख्याति के लिए, अर्थात आत्मा को आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, आत्मा की आत्मा को अनुभूति के लिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति ज्ञान की ही अनुभूति है, है? शुद्ध नय से प्राप्त आत्मा की अनुभूति वो ज्ञान की ही अनुभूति है, श्लोक नंबर 13 में है। और उसी में ये कहा कि आत्मा को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। यहाँ कहते हैं आत्मा की ख्याति करनी, उस आत्मा की ख्याति के लिए क्या करना है? पर ख्याति हेतुन। कौन सी बात है? पर ख्याति हेतुन, बस इतना ही पढ़ पाएंगे। ज्ञान संबंधी 5 बोल है जो इससे समझ में आता है। किरण भाई, कौन से है 5 बोल? कि मुझ में ज्ञान नहीं है, एम नथी। बात समझ में? ध्यान से ना, क्योंकि इस बिंदु पर वापस आना है कि मुझ में ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जानता नहीं, एम पर नथी। मुझ में ज्ञान है, मैं जानता हूं। तीसरा बोल कि पर है तो मैं जानता हूं, या विषय है तो मैं जानता हूं, ऐसा भी नहीं। चौथी बात, पर को जानता हूं ऐसा भी नहीं। समझ में आ गई होगी? प्रकाश भाई वो चला ही रहे थे विषय, है ना। पांचवी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि मैं विकल्प करता हूं इसलिए जानता हूं, ऐसा भी नहीं। समय हो गया इसलिए ज्यादा खुलासा नहीं कर पाएंगे, पर विकल्प करता हूं इसलिए जानता हूं, ये भी बात सही नहीं है। क्योंकि संक्षेप में जब 5 बोल समझ में आ गए दोहरा सकते हैं नंद भाई? नहीं, दोबारा कि मुझ में ज्ञान नहीं है या किसी भी जीव में ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, मैं जानता नहीं ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूं पर है इसलिए जानता हूं ऐसा भी नहीं है, पर को जानता हूं ऐसा भी नहीं है। मतलब सारी क्रियाएं अपने में ही हो रही, और सबसे बड़ी बात, मैं विकल्प करता हूं इसलिए जानता हूं ऐसा भी नहीं है। क्यों? संक्षेप में जवाब, यहाँ सारे स्वाध्यायी बैठे हुए हैं और शिविर चलता है, परीक्षा मुख ग्रंथ का सूत्र है, स्वावरम क्षोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। आशय इसका यह है कि किस समय कौन सी वस्तु ज्ञान का गेय बनती है वो भी तय है। मैं जानता हूं ऐसा अभिमान करने की आवश्यकता भी नहीं है। सभी जगह घटा लेना, मैं बोलता हूं अच्छा बोलता हूं, अच्छी भाषा है, शैली अच्छी है, ये झूठा अभिमान है। जिस समय जो शब्द जैसा निकलना है, जो ज्ञान का विषय जिस समय बनना है वो बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये स्वतंत्र है। अब बात इतनी सी है कि ये जो पांचों बोल है वो सब के सब पर ख्याति हेतु के लिए काम कर रहे हैं। मुझ में बहुत शक्ति है लेकिन मेरी सारी शक्ति पर की ख्याति में लगी पड़ी है। बात समझ में आ गई? मैंने अपने ज्ञान का उपयोग पर के लिए किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। घर का मुखिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही कमाता हूं, है? मैंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया कि भैया तेरे भीतर राग है वो नरक निगोद ले जाता है, वास्तव में तू अपने लिए कमाता है, किसी न किसी प्रकार के कषाय का पोषण करता है, लेकिन केवल ये तो उदाहरण मात्र है। बात समझ में आ गई? ज्ञान का दुरुपयोग प्रति समय हो रहा है क्योंकि ज्ञान में निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ख्याति नहीं हो रही है। जब तक ज्ञान में अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की ख्याति नहीं होती है तब तक ज्ञान का दुरुपयोग ही होता है। वो ज्ञान पर की ख्याति कर रहा है। जो ज्ञान या उद्देश्य इतना सा है, विधि इतनी सी है, उपाय इतना सा है कि जो ज्ञान तू पर में लगा रहा है, संसार में लगा रहा है, संसार में उपयोग दे करके खर्च कर रहा है, उस उपयोग को, उस ज्ञान को अपने चैतन्य देव को समर्पित कर दे। अनुभूति नहीं हो तो मेरे पास से ले जा। बात समझ में आ गई? ये तो खुद को ही है कि जो ज्ञान पर की ख्याति कर रहा है। क्या लिखा है? पर ख्याति हेतु, ज्ञान हेतु का अर्थ है खर्च हो रहा है। किसके लिए खर्च हो रहा है? संस्कृत पढ़ने के फायदे रोज कह रहा हूं मैं कि जो ज्ञान पर की ख्याति, पर की प्रसिद्धि के लिए हेतु खर्च कर रहा है। हे जीव, तू जो ज्ञान पर की ख्याति के लिए खर्च कर रहा है, बात समझ में आ गई? उस ज्ञान को क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जो काम तू वहां कर रहा है वो काम अपने घर में कर। जो पांच बोला है तो ना, ज्ञान है ज्ञान का पर की ख्याति के लिए जो तू उपयोग करता है, खर्च करता है, कैसे ये मत पूछना। कि बाहर जाने के लिए तो तू नहीं पूछता कि कैसे है? बाहर जाने के लिए तो कभी नहीं पूछा है? कि किसी आचार्य से ये नहीं पूछा कि मैं बेटे की शादी कैसे करूं है? क्यों किरण भाई? वहां तो तुझे ज्ञान है, चतुराई है। टोडर मुझे ने तो खूब लताड़ लगाई साहब। बाहर तो तू चतुराई दिखाता है और यहां बहाने बनाता है। बाहर चतुराई दिखाता है और यहां पर बहाने बनाता है। तो भैया इसका मतलब है वास्तव में तुझे धर्म ही नहीं चाहिए। धर्म भी तुझे देखा देखी कसाय के लिए ही चाहिए। पर ख्याति हेतु, हेतु का अर्थ खर्च कर दिया। तूने अपने ज्ञान को, अनादिकाल के जीवन को पर की प्रसिद्धि के लिए खर्च कर दिया। मैं रजनी भाई हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मुखिया हूँ, उदाहरण है ओए है सभी की बात ये है। कपड़े भी इसलिए पहनते कि लोग मुझे अच्छा समझे। महंगे से महंगा कपड़ा क्यों लाते हो भाई, सस्ता क्यों नहीं खरीदते? बता, जवाब मिल गया ना आपको? कानो भाई जवाब मिल गया, क्यों प्रेस के ही क्यों पहनते हो? बात समझ में आ गई? ये सब है क्या है? पर ख्याति, पर की ख्याति के लिए जो तू जिस इंद्रिय ज्ञान का, मति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, उस मति ज्ञान का प्रयोग आत्म ख्याति के लिए करना। अब आत्म ख्याति के लिए मति ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, वो शाम को चलाएंगे।